Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नृतनं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके द्वितीयं तु भवायस्य द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीं उद्धरिष्यन्नुपादत्त द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीं यज्ञेशोकरं वपु उपदेशनुपादत यज्ञेश सौकरं वपु द्वितीयं दूसरा तू लेकिन भवाय कल्याण के लिए अस्य पृथ्वी के रसातल निम्न संभाग में गतां गई हुई महीम पृथ्वी को उद्धरिष्यन् उठाकर उपादत्त स्थापित किया यज्ञेशः स्वामी या परम भोक्ता सौकरं सुकर का अपुहु अवतार अनुवाद एवं तात्पर्य इस प्रकार है अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल नारायण के द्वारा श्री गोपाल की जय समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार अर्थात द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया तात्पर्य यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है बिना कार्य विषय विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गेंद पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था, गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना, गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है। और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने सुकर की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। ओम अज्ञानति निराम धस्य जाना मन चला गया
चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य महाविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपवदामहिं कदाचिदपदां वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सर्वगणगणाधान्वितं तं सजीवम् सारेदं सारदूतं तज्जनचैत्रं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां शरणदादिविशाखां सांद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्रये लोकेश गोपिकाकान्त राधाकान्तमुरारे तत् काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येश च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येश च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्विघ्रते दैत्यान्धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते औल्लस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते नेच्छां मूर्छयते दशादशिकृते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। आज दूसरे अवतार का वर्णन हो रहा है। कौन सा रूप है ये? वराह अर्थात सूकर। भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। द्वितीयम अर्थात दूसरा भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप कौन सा बना? सौकरम वपु। भगवान ने सौकर का वपु स्वीकार किया। द्वितीयम तु भवायस्य, भवाय भवाय का अर्थ होता है कल्याण के लिए। तो दूसरा अवतार भगवान का सृष्टि के जीवों के कल्याण के लिए या फिर ब्रह्मा जी के कल्याण के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी परेशान थे। जैसे ही सृष्टि प्रारंभ किए, प्रारंभ करते ही जीव सृष्टि के लिए तो देखे कि पृथ्वी लोक तो है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी को उठा के कहाँ डाल दिए थे?
गंदे
जगह। रसातल मतलब गंदी जगह। आप सोचिए जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं जाता हो कितनी गंदी जगह होगी। कि हमारे यहाँ सूर्य प्रकाश है करके थोड़ा ये वातावरण शुद्ध रहता है, लेकिन इस भूमंडल के नीचे कोई सूर्य प्रकाश नहीं जाता, मतलब वहाँ कितनी गंदगी होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस गंदे स्थान से उठा के उसने ऊपर रख दिया। बहुत गंदी जगह है, इससे नीचे के लोगों में हालांकि सुविधाएं तो है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कार्य भी हो जाते हैं, लेकिन इतनी स्वच्छता मेंटेन नहीं हो पाती है जितनी यहाँ पे होती है। इसलिए प्राय गंदी जगह तो है ही है। तो रसातल में इस पृथ्वी को डाल दिया गया था किसके द्वारा?
हिरण्याक्ष।
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे, उसमें से हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया और उसी रसातल से फिर भगवान इस पृथ्वी को उठा के लाए। और स्वकर्म वपु, भगवान स्वकर का रूप धारण किए थे। तो भवायस्य रसातल गता महिम, रसातल में जो चली गई महिम, महिम मतलब पृथ्वी, उद्धरी शनो पादत्त, उसको ऊपर उठाकर पादत्त मतलब उसको अपने स्थान पे रख दिया। किसने रखा? तो कहते यज्ञेश, उस भगवान यज्ञेश ने, जो यज्ञ के ईश्वर है या फिर यज्ञ के भक्ता है, उस भगवान ने सूकर रूप धारण करके रसातल गता महिम, रसातल में गई हुई पृथ्वी को उद्धरी शनो पादत्त, उठाकर पादत्त अपने स्थान पे स्थापित किया। और किस लिए? भवायस्य, कल्याण के लिए। तो इसमें यह नहीं लिखा किसके कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए?
पृथ्वी
के कल्याण के लिए। लेकिन पृथ्वी के कल्याण के लिए नहीं, पृथ्वी का तो ऐसे ही कल्याण, हालांकि उसका तो कर्तव्य बनता है भगवान का कि उसको उसकी जगह पे रखना, क्योंकि पृथ्वी है वो कौन है? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये विष्णु पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी है, उसके लिए वो घर से बाहर यहाँ था, उसको कोई किडनैप किया है तो वो तो भगवान का ही कर्तव्य बनता है। जैसे राम के समय पे सीता चली गई तो उसको ला के ढूंढ के तो उसका कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि उनसे विवाह किया मतलब उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो ये तो कर्तव्य का पालन किया। लेकिन कल्याण के लिए और क्या कल्याण किया उन्होंने? किसके कल्याण के लिए?
ब्रह्मा के लिए और जीवों के कल्याण के लिए।
ब्रह्मा जी के कल्याण के लिए, क्यों? ब्रह्मा जी का तो ऐसे भी वो सृष्टि तो था, तो उसमें कोई कल्याण की बात क्या? उसका तो सेट, चाहे कुछ भी करो, चाहे नहीं भी रहे, तुमको जो करना है करो, मतलब अपने हिसाब से फिर सेट करो, नहीं है तो अपने हिसाब से और सेट करो। पृथ्वी के जीवों के कल्याण के लिए, हाँ ये भी हो सकता है, वहां पे परेशान रहते हैं। यहाँ पे एक दो दिन सूर्य नहीं आते तो हम परेशान हो जाते हैं, तो रसातल में गई हुई मही को उठाने के लिए हो सकता है कि ऊपर उठा के थोड़ा फ्रेश जगह पे रखे तो सुखी हो जाए। नहीं, फिर भी अभी वो पढ़ रहे थे हम, उसमें लिखा है कि परित्राणाय साधना, किसके लिए? भगवान ने इस गई हुई रसातल को, मही को ऊपर उठा के रखा केवल परित्राणाय साधना। भगवान ने गीता में वचन दिया है ना कि मैं क्यों क्यों आता हूँ, मेरा क्या रीजन है, क्या क्या है वो, क्या श्लोक है वो, यदा यदा ही ग्लानिर्भूतिर भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजा में, फिर
परित्राणाय
साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान ने स्थापित किया कि नहीं? परित्राणाय साधुना, साधु को परित्राण करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए पृथ्वी को सबसे पहले रखा, और जैसे ही पृथ्वी को रखा तो वो आ गया, तो विनाश आया चाहे दुष्कृति, और दुष्कृति का वध किया। दुष्कृति मतलब जानते हैं? दुष मतलब बेकार, बेकार, और सुकृति, सुकृति मतलब जिसकी सुकृति बिल्कुल बेकार है,
मति
है ना, उन लोगों को भगवान। तो दुष्कृति, दुष्कृति व्यक्तियों का वध करने के लिए भगवान आते हैं। तो परित्राणाय साधना विनाशाय से दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी। तो इसमें द्वितीयम तो भवायस्य, भवायस्य अर्थात भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए उस पृथ्वी को जो गई हुई पाताल रसातल में गई हुई उस पृथ्वी को उठा के अपने स्थान पर रखें। भगवान को यज्ञेश कहा गया है, यज्ञेश का क्या अर्थ होता है?
यज्ञ
के ईश्वर, ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर या फिर भोक्ता, यज्ञ के भोक्ता। यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान। भगवद गीता में कहाँ पे कहते हैं?
यज्ञ भोक्ता,
भगवद्गीता के पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक, भुक्तारम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम चेदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति। अगर कोई व्यक्ति इतना जान ले कि सारे सृष्टि के भोक्ता केवल भगवान है, तो फिर वो व्यक्ति शांति को प्राप्त, वो शांत हो जाएगा, फिर ज़्यादा उत्पटन कार्य नहीं करेगा। क्योंकि भोक्ता अपने आप को समझ के ही व्यक्ति कार्य में रत होता है। लेकिन जब ये जान जाता है कि भोक्ता, परम भोक्ता भगवान है, तो फिर उसके लिए जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को इसलिए यहाँ पे भोक्ता संबोधन, और विशेष रूप से वैसे भगवान के कई सारे नाम होते हैं, लेकिन ये जो द्वितीय स्कंध में इसका विस्तार से वर्णन है ना, द्वितीय स्कंध में भगवान ने कैसे ये यज्ञेश रूप धारण किया, इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। और वहाँ पे ये सूकर रूप ना कहकर उसमें हर जगह पे भगवान यज्ञेश ने ऐसे किया, भगवान यज्ञेश ने ऐसा ही वर्णन मिलता है वहाँ पे, सूकर ने ऐसा किया ऐसा नहीं, यज्ञेश भगवान सूकर रूप जो है वो विशेष रूप से यज्ञेश स्वरूप है भगवान। और दूसरी बात, हाँ, अब जानते हैं भगवान ने जब ये सूकर रूप धारण किया था तो कितना बड़ा होगा?
नाक पे रख दिया था पृथ्वी को,
नाक के ऊपर रखे थे। अच्छा, वो भी मैं बता देता हूँ। वसन विहित वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धीरता शुकर रूप जय जगदीश हरे। ये दशावतार है, और दशावतार के अंतर्गत ये भगवान ने शुकर रूप धारण किया था, वो एक रूप भी है। तो वसति दशन शिखरे, दशन किसको कहा जाता है? दांत को, दशन दांत को कहा। और शिखरे मतलब उसके शिखर, मतलब शिखर किसको कहा? टॉप रीच, हाँ टॉप जो हिस्सा होता है ना वो। तो वसति मतलब वास किया था, दशन शिखरे उस दांत के ऊपर, धरणी, धरणी मतलब पृथ्वी में, तब लगना। और कैसा लग रहा था वो? तो कहते हैं शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। शशि किसको कहा जाता है? चंद्रमा। शशिनी कलंक, शशि में क्या है? कलंक कलेव निमग्ना। जैसे शशि में कलंक कैसा दिखता है, वैसे पृथ्वी उस कलंक के समान दिख रही थी, भगवान का उतना सुंदर स्वरूप था। केशव धीरता शुकर रूपा जय जगदीश। तो कितनी सुंदर उपमा जयदेव गोस्वामी ने दे दिए। हम लोग सूकर रूप मतलब हम लोग ऐसा ही सोचते, एकदम काला काला भेड़ जैसा होगा, ऐसा नहीं। भगवान ने ऐसा स्वरूप नहीं लिया था भगवान के, फिर भी वो सूकर स्वरूप से भी इतना तेज निकल रहा था, बिल्कुल चंद्रमा की तरह वो चमक रहे थे। और चंद्रमा की तरह चमकते हुए वो भगवान, जब पृथ्वी उसके दांत के ऊपर पड़ी थी तो वो कैसा लग रही थी पृथ्वी? वो काला धब्बा, जैसे चंद्रमा में काला कलंक है ना, तो शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशव धीरता शुकर रूपा जय जगदीश। देखिए भगवान अगर शुकर रूप भी धारण करते तो ऐसा नहीं कि भगवान ने भी शुकर रूप धारण किया है तो वो शुकर
पूज्य हो,
मतलब अभी वो निकृष्ट योनि में है, जैसे बुद्ध लोग, जैन लोग, जैन लोग जो है वो क्या मानते मालूम है? हाँ, भगवान कृष्ण, जैसे अभी भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने सब उत्पटांग चोरी किया, मारकाट किया, और क्या किया, गोपियों के वस्त्र चुराए, और सारे भी बहुत सारे कार्य किए जो नहीं करने चाहिए व्यक्ति का। विवाह भी एक से तरह से कितना 16,000 से विवाह किया, तो इस प्रकार के कार्य किए हैं, मतलब निश्चित है कि भगवान कृष्ण भी नरक में है, भगवान कृष्ण भी नरक में है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो अभी नरक में है, हालांकि वो भगवान है, आगे जाके वो फिर से भगवान बनेंगे, लेकिन अभी तो वो नरक में है। कहाँ पे हो? अभी नरक में। ऐसी भावनाएं हैं, हालांकि भगवान कुछ भी करे वो भगवान भगवान ही रहते हैं, है ना, वो उसके ऊपर कोई कर्म के बंधन। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, क्या कहा है?
जन्म कर्म तुम्हें दे।
भगवान कहते हैं हाँ वो तो है,
लब्धते करके कुछ
नमे कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फलस्पृहा, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता क्योंकि मुझे कोई कर्म के फल की इच्छा नहीं। भगवान कितने ही कर्म करते हैं लेकिन भगवान उस कर्म के पीछे उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए उस कर्म कोई मुझे बांध कर्म कभी बांधता है जब उस व्यक्ति को इच्छा होती है। भगवान को कोई कर्म नहीं बांधता क्योंकि नमे कर्म फलस्पृहा, मुझे कोई कर्म के फल की आशा नहीं है। भगवद गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि कर्म की आशा नहीं है, इसलिए कोई कर्म भी मुझे बांध नहीं सकता। और ये बात को भी कोई जान लेता है तो जन्म कर्म से मैं जीवन एवं यो वैसी भगवान के जो कर्म है आप जानते हैं ना, और दुर्वासा मुनि वाली कथा भगवान कृष्ण और वृंदावन यहाँ यमुना के उस पार दुर्वासा बैठे थे, उस पार यमुना के दुर्वासा बैठे थे और गोपियों को दुर्वासा के लिए भोजन लेके जाना था। तो जब भोजन लेके जाना था तो इस पार भगवान कृष्ण भी खड़े थे और यमुना में एकदम जोर से पानी बह के जा रहा था। गोपियों ने कहा कि उस पार कैसे जाए क्योंकि कोई आज तक ब्रिज तो बना नहीं है वृंदावन में, एक बन रहा है उसको भी अटका दिया गया है, तो उस पार जाए कैसे। तभी गोपियों ने खूब सोचा वहां खड़े थे। तभी भगवान कृष्ण ने उसको आके कहा क्या करना है, वो साइड जाना है जहाँ। तभी गोपियों से भगवान कृष्ण ने कहा यमुना महारानी से प्रार्थना करो कि अगर ये यशोदा का लड़का भगवान अर्थात कृष्ण, यशोदा का लड़का कृष्ण अगर पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है तो यमुना उसको रास्ता देंगे। क्या बोला? हे यमुना महारानी प्रार्थना करो, आप गोपियों से कहा आप प्रार्थना करो, यमुना महारानी से कहो कि अगर कृष्ण पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है किसी भी समय कोई समय उसके मन में कोई स्त्री का विचार भी नहीं आया है तो हे यमुना महारानी आप मुझे रास्ता। गोपियों हंसने लगी दिन रात हमारे पीछे पड़ा रहता है लंपट और ऐसी बातें बोलता है, तो गोपियों के इसके बाद पे विश्वास नहीं हुआ। किंतु फिर भी उन्होंने उसकी मजाक उड़ाने के लिए यमुना महारानी से बोल दिया मजाक में ही बोला कि यमुने अगर कृष्ण पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे। तो यमुना उधर ही रुक गए, दो भाग में विभक्त हो गए। सारी गोपियां देखते ही रह गए भगवान कृष्ण का, बोले कि क्या बात है। तो गोपियां सारी वो साइड चली गई, वो साइड चली गई, सारा भोजन आदि लेके वो दुर्वासा मुनि को खिलाए और खिला। तब तो यमुना तो फिर से बहने लग जाएगी ना, तब तक रुकेगी थोड़ी, तो चली गई। जैसे वो साइड निकल गई तो बहना चालू हो गया। फिर तो वहां पे दुर्वासा मुनि ने भोजन आदि किया, सारा समाप्त हुआ। अब ये साइड भी कैसे आए, तो दुर्वासा मुनि सोच में पड़ गया, अब ये लोग खड़ी है मतलब कुछ टेंशन। तो दुर्वासा ने पूछा कि क्या बात है, खड़े कि वो साइड जाना है? हाँ। दुर्वासा ने भी वहां पे बैठे बैठे बोला, क्या बोला?
कि अगर मैंने कुछ खाया नहीं है,
आप जितना भी लाए हो अब यमुना महारानी से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? कि हे यमुने अगर दुर्वासा मुनि ने हमने लाए हुए भोजन में से एक भी कण ग्रहण न किया हो तो हमें रास्ता दे। हमारे सामने ही सब वाह कर दिया, कैसे मान ले कि इसने नहीं खाया ये तो आंखों देखा हाल हमारे सामने हुआ और कैसे मान ले। तभी जाके गोपियों को तो अभी तो ऐसे ही धक्का तो लग ही गया था, वहां तो उसने ऐसा बुलवाया, अभी ये महाराज भी ऐसे उसके। तभी दुर्वासा मुनि ने कहा कि बोलो आप, चिंता मत करो। तो उसने कहा कि हे यमुने अगर दुर्वासा मुनि के हमारे लाए हुए भोजन में से एक भी कण ग्रहण न किया हो तो हमें रास्ता। तुरंत ही वो यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया। अब सोचिए आप ये कैसे संभव हो सकता है ये संभव ही कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण और ब्रह्मचारी गोपियों के साथ रास खेलना, दिन रात उसको परेशान करना, इस प्रकार की क्रियाओं को करते हुए फिर भी वो ब्रह्मचारी। और यहाँ पे दुर्वासा मुनि सबके सामने इतना सारा भोजन स्वाहा कर जाने के बाद भी नहीं खाया, ये कैसे है? इसलिए कर्म विकर्म और अकर्म, अकर्म जिसका कोई फल नहीं होता, अकर्म उसको मारना। इसलिए वहां पे अकर्म के सिद्धांत को दुर्वासा मुनि ने प्रस्तुत किया और भगवान ने क्या प्रस्तुत किया, नमे कर्म फल स्प्रिया। मैं भले ही कर्म करता हूं लेकिन मन में कोई स्प्रिया नहीं है, एक ही स्प्रिया है बस, भक्तों को आनंद देना उसको आनंद। हालांकि भगवान को कोई, क्योंकि भगवान का एक नाम है आत्माराम, आत्माराम। आत्माराम क्या मतलब होता है जानते हैं? आत्माराम मतलब अपने ही अंदर रमण करने वाले, अपने ही अंदर आनंद का अनुभव करने वाले को आत्माराम। उसको सुख प्राप्त करने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को आत्माराम कहा जाता है। हमारा ऐसा है कि हमको सुखी होने के लिए, फिर आनंद प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु या व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं है। भगवान वो स्वयं आत्माराम है ना, इसलिए उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान अकेले भी अगर पूरे रूम में अगर अकेले बैठे रहे, उसको टीवी भी ना मिले, कुछ ना मिले, वो बैठे ही रहे ना, फिर भी वो आनंद में रहेंगे। और हम लोग अगर बैठेंगे तो
टाइम पास करने के लिए चाहिए
क्या, लैपटॉप तो चाहिए ना, तो उसमें वाईफाई भी चाहिए, क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो इधर उधर देखना पड़ेगा। तो संसार के कुछ भौतिक उपकरणों की हमको आवश्यकता पड़ती है, और ये ना पड़े तो कम से कम दूसरे व्यक्ति की बात करने के लिए ना, कुछ तो बात करना चाहिए ना। और दिन भर आपके रूम में कोई भी ना हो, घर में टीवी भी ना हो और कोई पुस्तक भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो बैठ बैठ के क्या होगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसे ही हालत खराब हो जाएगी बैठ बैठ के। इसलिए व्यक्ति को, व्यक्ति की हालत यह है कि उसको दूसरे के ऊपर आधार रखना पड़ता है, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान आत्माराम है ना, आत्माराम का अर्थ यही होता है कि अपने आत्मा में ही, अपने आप में ही वो आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवान कैसे है, सच्चिद है ना, भगवान जो है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद होने के नाते उनके अंदर से स्वाभाविक रूप से आनंद क्या है, प्रकट होते ही रहता है ना, उसके शरीर में से आनंद निकलते रहता है। इसलिए उसको बाहर कहीं आनंद ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको आनंद बाहर ढूंढने जाना पड़ता है, लेकिन भगवान के अंदर से ही आनंद प्रकट होता है। भगवान जो है वह आनंद के स्वरूप है ना, आनंद के स्वरूप है, इसलिए उसको कहीं बाहर से आनंद को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान कृष्ण ने नमे कर्माणि निपंती नमे कर्म फल स्प्रिया है ना, मुझे कोई कर्म के फल की आशा नहीं है, इस बात को उन्होंने प्रस्तुत किया, और अकर्म के सिद्धांत को उस दुर्वासा मुनि ने प्रस्तुत किया। तो द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महिम उद्दिष्टं पादत्त यज्ञेश सौकरं मुखं। भगवान ने सौकर रूप धारण किया, और ये यहाँ पे द्वितीय बताया गया है, यहाँ पे ये कौन सा द्वितीय, और जयदेव गोस्वामी ने उसको तृतीय बताया, यहाँ पे तीसरा अवतार के रूप में इन्होंने डाला। लेकिन ये तो उन्होंने मुख्य मुख्य अवतार लिए, इसके लिए उसने क्रम में तीसरा डाले हैं, लेकिन उसका कोई इसमें कोई क्रम नहीं है, दस अवतार ऐसे ही गिनाए हैं, लेकिन इसमें जो है वो लाइन से गिनाया गया है। पहला पहला कौन सा रहा, पहले नहीं, सबसे पहले प्रथमम तो प्रथम अवतार हुआ था कि नहीं, इससे पहले जो कल क्लास हुआ था, स एव प्रथमम देवम कौमारम सर्ग माश्रितम, वो प्रथम अवतार है। स एव प्रथमम देव कौमारम सर्ग माश्रितम, चार कुमार जो है वो प्रथम अवतार है भगवान के। और दूसरा अवतार हुआ आज, आज का ये अवतार है, ये है शुक्र रूप भगवान का, भगवान ने शुक्र रूप धारण किया। और फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, और उसके साथ युद्ध होने के बाद उसका अवध किए, और थोड़ा पहले से ही वो झगड़ा, मतलब ये फर्स्ट युद्ध था भगवान का, क्योंकि ये सबसे पहले पृथ्वी का, मतलब ये पूरे चतुर्युग की प्रारंभ की बात है, जब ही चतुर्युग प्रारंभ हुआ तभी, वैसे ब्रह्मांड के प्रारंभ की बात है, ऐसे शुक्र रूप देखा जाए तो भगवान ने इस रूप को धारण किए। और भी है, भगवान ने जब ये वराह रूप को धारण किया और उस पृथ्वी को अपने स्थान पे रख रहे थे, और उसी समय क्या नाम था उसका, जांबुवान, जांबुवान ने
किसका?
हाँ जांबुवान, जांबुवान ने भगवान की कितनी परिक्रमा कर लिए थे दोस्तों? सात परिक्रमा किए थे ना? हाँ जांबुवान जी ने भगवान ये शुक्र रूप की सात बार परिक्रमा की है। तो आप सोचो जिसके दांत के अग्र भाग के ऊपर वो छोटी सी पृथ्वी ऐसा मतलब तो उतने बड़े स्वरूप को इन्होंने क्या किया? सात बार परिक्रमा की है उतने समय में। उसके साथ युद्ध भी चल रहा था उतने समय वो उन्होंने सात बार उसकी परिक्रमा कर ली। ये कहाँ पे बताया मालूम है? ये जब युद्ध चल रहा था और वो समंदर के वो साइड जाना था ना, तो अभी मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो ये समंदर मेरे लिए क्या है? तो बोले क्या है मतलब क्या है? समंदर कोई छोटी चीज थोड़ी है। बोले ये कुछ भी नहीं है, अभी मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो ये भगवान ने जब ये स्टार्टिंग में जब शुक्र रूप धारण किया था है ना, ये सौकर वपु जब धारण किया था वो टाइम पे मैंने पूरे शुक्र रूप का कितनी बार परिक्रमा किया था? सात बार परिक्रमा किया था। मतलब कितना बड़ा वो स्वरूप होगा वो भगवान का, और उसको सात बार परिक्रमा मैंने वो टाइम पे कंटिन्यू में एक ही बार में ऐसा कर लिया। लेकिन अभी बूढ़ा हो गया इसके लिए समंदर थोड़ा जाऊंगा तो थोड़ा परेशानी लगता है, जा सकता हूँ ऐसा मुझे डाउट है, तो बूढ़ापे के कारण मैं जा नहीं पाऊंगा। वहां तो उन्होंने इस बात को कहा है कि हो सकता है लेकिन अभी संभव नहीं है क्योंकि बुढ़ापे। तो इस प्रकार कई सारे जगहों पर ऐसे कुछ कुछ जगहों पर जो मुझे याद था, जैसे यहाँ पे जय जय गोस्वामी ने और जांबुवान जी ने भगवान ये वरा रूप को याद किए थे, और भी अन्य स्वरूप हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का भले ही शुक्र रूप है लेकिन उसमें कोई गंदगी या कोई मल आदि ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो किसी मल मूत्र और इनसे नहीं बनता है ना। भले ही भगवान सौकर रूप धारण किए है ना, शुक्र रूप को धारण किए, किंतु फिर भी वो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद है, उसमें कोई मल मूत्र आदि नहीं। इसलिए कभी कभी एक प्रश्न भी होता है, और जानते हैं महाभारत का युद्ध आपने देखा तो होगा, देखा है। जब भी युद्ध चलता था वो समय पे कई सारे बाण है ना तीर छोड़े जाते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि भगवान अर्जुन के ऊपर जाते हुए बाणों को रोकने के लिए खुद खड़े हो जाते थे और अपने आप के ऊपर ले लेते थे। तो जब भी वो बाण लगते थे तभी उसके शरीर से क्या होता था? खून बाहर आता था, खून निकल जाता था। भगवान के शरीर से भी क्या निकलता था? अभी तो आप बता रहे थे कि उनका स्वरूप जो है सच्चिदानंद है और उसके शरीर में जब तीर लगता है तो खून आता है, ये कैसे? एक चीज हो सकता है, या खून आवे या फिर सच्चिदानंद, ये दोनों संभव कैसे है? आया कि नहीं आया? और भीष्म पितामह ने वो उनकी स्तुति में कहा कि जब वो युद्ध क्षेत्र में मैं तीरों की हार बना, मतलब तीर एक के बाद एक तीर छोड़ रहा था, वो समय पे जब अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पाता था तो आप भी खड़े हो जाते थे उस तीर को रोकने के लिए, और वो तीर जब भी आपके छाती के ऊपर लगता था तो आपकी छाती को भी वो छलनी करके वहां से खून निकाल लेता था, और वो जो स्वरूप है ना बहुत मस्त लगता है। अब बताओ भगवान का दिमाग सटक जाएगा कि नहीं? भगवान को बोलते हैं कि आपका वो स्वरूप बहुत अच्छा लगता था जब भी वो आपके छाती को छलनी कर दिया रहता था। तो इस प्रकार से जब कहा तभी उसमें प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा भी संभव है कि भगवान, इसका क्या उत्तर है जानते हैं? क्या उत्तर है? भगवान सच्चिदानंद है और उससे छाती से खून भी निकला, तो ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? हाँ वो भक्त के लिए किया, वो नहीं बोल रहा। भगवान का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, उसमें कोई मांस हड्डी खून आदि नहीं है, समझ रहे हैं? ये शुक्र रूप धारण किया तो उसमें मांस हड्डी ये सब कुछ नहीं है, भगवान का स्वरूप फिर भी सच्चिदानंद ही है। तो फिर भगवान कृष्ण का भी स्वरूप सच्चिदानंद था और ये भी स्वरूप सच्चिदानंद, इसमें तो खून नहीं निकला इसका तो वर्ण। लेकिन भगवान कृष्ण जब युद्ध भूमि वहां से उसको खून भी निकलते थे कहीं कहीं जगह, तो जब खून निकलता तो वो सच्चिदानंद है तो खून कैसे निकल गया? आप भक्ति शास्त्र के स्टूडेंट हैं, उसको खून कैसे निकलेगा? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो अन्न में से खून बना लेते हैं हमारे अंदर, वो भी यहां पे रह के नहीं, ऐसे ही खाली वहां से बैठे बैठे अन्न में से खून बना सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर नहीं बना सकते अपने आप। ये तो रही हमारी बात, जहां पे वो दूर बैठे बैठे भी हमारे अंदर ये क्रियाएं कर लेते हैं, क्या कि हम अन्न खाते उसका ब्लड बन जाता है और उसका अपने आप सर्कुलेशन सब कुछ हो जाता है। तो ये अगर वो दूसरे के अंदर करवा सकते हैं कि अपने अंदर नहीं करवा सकते हो, और उसको क्या वो सब मशीन फीड करने की भी जरूरत है? अपने आप ऐसे भी हो सकता है ना उसके अंदर, तो वो तो न अन्न न डाले और कुछ भी न डाले फिर भी वो चाहे तो कहीं से भी खून निकाल सकते। इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वास की बात। मूछी वाली बात आप जानते हैं, मूछी था और एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण और मूछी दोनों के पास नारद मुनि गए। नारद मुनि ने पूछा, नारद मुनि को उस ब्राह्मण ने पूछा कहाँ से आ रहा? बोले कि कुछ नहीं, वैकुंठ लोक से आ रहा। तो आप वहां पे जाते रहते? बोले हाँ जाते ही रहता हूँ। तो उसने कहा फिर कि हाँ अभी जाके आओगे तो थोड़ा पूछ के आना, भगवान क्या कर रहे हैं मेरे को बताना। ठीक है, और वहां से गए उस मोची के पास। मोची के पास जाके मोची ने भी यही कहा कि अगर आप अभी दोबारा जब जाके आते हो तो तुरंत यहाँ पे आके मुझे बताना कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो जाके जैसे ही कुछ दिनों के बाद आए तो उस ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे? भगवान के पास से आए तो भगवान क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, वैसे ही भगवान सुई का वो होता है ना, उसके अंदर से हाथी को घुसा रहे थे। ऐसे पूरा हाथी चला गया था, खाली वो पूंछ अटक गई थी। तो क्या फेंकते हैं? ये कभी हो सकता है क्या? वो सुई के उसके अंदर से हाथी घुस जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। तुम कहीं और से आयो तो भागो यहाँ। ब्राह्मण ने ऐसा कहा और ज्यादा दिमाग लगाया ना उसने, और उस मोची के पास गए। मोची के पास जाके कहा कि मोची ने प्रणाम किया नारद मुनि को, उठ के बोला कि प्रभु कहाँ से पधारे? बोले वैकुंठ लोक से आए। बोले भगवान क्या कर रहे थे? वैकुंठ से आए, भगवान कहो गए? बोले हाथे क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, वो ऐसे ही सुई के उसके अंदर से वो हाथी को गुजर रहे। आधे से ज्यादा हाथी चला गया था नारद मुनि का। हाँ हो सकता है, मोची ने कहा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हाथी बना सकते, हाथी उतना बड़ा बना सकते, उस हाथी का छोटा भी स्वरूप बना सकते और सुई इतनी छोटी ही बनाते हैं हम लोग, तो सुई इतनी बड़ी भी बनाते, उसमें से डाल भी सकते, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि उनके सब कार्य है वो सब बड़े बड़े हैं, उसके लिए उसकी सुई भी बड़ी होगी। हमारी सुई तो छोटी छोटी है, कार्य छोटे होते हैं ना, उनकी सुई तो बड़ी। क्यों मालूम है? भगवान ने भगवद गीता में बताया, सूत्रे मणि गणाई, कौन सा श्लोक है? सातवें में क्या है वो श्लोक का शुरुआत? नान्यत् परतरं किंचित् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मणि। मयि सर्वम् इदं प्रोतम, मेरे द्वारा ही ये सब कुछ क्या किया गया है? प्रोतम मतलब बना दिया गया है, फिर स्थापित कर दिया गया है। कैसे? सूत्रे मणि गणाय, सूत्र के अंदर धागे के अंदर मणि गण, मणि जो होता है जैसे उसको स्थापित किया जाए, लेकिन वो हो जाने के बाद उसमें वो धागा दिखता, इसमें दिख रहा है क्या धागा? खाली मोती मोती ही दिखेंगे उसमें धागा। उसी प्रकार ये सारे सृष्टि के कार्य हो रहे हैं, लेकिन किसी को दिखते दिखता नहीं हो कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे धागा होता है वो मणि के अंदर दिखता नहीं। लेकिन अगर वो मणि के अंदर धागा न हो तो ये सारा क्या हो जाएगा? इसके अंदर से धागा निकल जाएगा तो ये मोती का क्या हो जाएगा? सारे यहां वहां बिखर जाएंगे। उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही नहीं चल रहा है। उसके अंदर सूत्रे मणि गणाए, मैंने इसमें सूत्र डाल के रखा है और अपने हिसाब से चलते रहे। अगर इसमें से सूत्र हटा लूं, सूत्रधार अगर सूत्र हटा ले उसमें से, तो ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे मतलब क्या होगा उसका कुछ ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य अपनी गति से अपने स्थान पे ढंग से चलता है। नहीं तो आज तक ऐसा भंवरा बना है क्या जो घुमाने के बाद अपनी स्पीड वही स्पीड पे चलता रहे? भगवान ने ये सूर्य जैसा भंवरा ऐसा बनाया कि उसको घुमा के छोड़ दिया तो अपनी एक ही लिमिट में और एक ही स्थिति में घूमते रहता है सूर्य का, वो ऐसे घूमते ही रहता है। और ऐसा भी नहीं कि कभी फास्ट होता है कभी स्लो होता है, ऐसा भी नहीं, एक ही स्पीड से चलते ही रहते। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई कि एक ही स्पीड से और एकदम ढंग से चलते रहते। क्यों मालूम है? क्योंकि सूत्र मणि गणाए गए, इसमें सूत्रधार के रूप में भगवान है। अगर वो नहीं रहे तो ये सृष्टि सृष्टि क्या, ब्रह्मा जी भी सर खुजाने लगे, उसको बोला गया अब क्या करूं, अब कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि पृथ्वी ही नहीं है तो मैं कहां सृष्टि करूं। सृष्टि करने के लिए पृथ्वी लोक की बहुत आवश्यकता है, सृष्टि में अगर पृथ्वी नहीं है तो मैं क्या करूंगा सृष्टि, और खूब परेशान थे वो। उसके द्वारा ब्रह्मा जी ने सोच लिया बस आज तो छुट्टी, आज क्या है छुट्टी, क्योंकि उसको लगे कि पृथ्वी नहीं है तो कहाँ सृष्टि और कहाँ कुछ चलने वाला। तो उसने सोचा कि आज से छुट्टी जाने दो, आज के दिन मतलब ये 12 घंटे का समय है ना ब्रह्मा का, तो बोले कि आज से ये सृष्टि हो नहीं सकती, जो पृथ्वी लोग तो है नहीं तो हम कहाँ करेंगे। तो फिर उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान इस सूकर रूप को धारण किए। हरे कृष्ण
चार।